नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन को मंजूरी दी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मौजूदा सरकार ने 2 साल में धार्मिक स्थलों के विकास पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में 350 ब्लैक स्पॉट्स में से 280 में सुधार किया और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के व्यवसायों की ऊर्जा आवश्यकताओं को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों और समय पर दी गई मंजूरियों के परिणाम स्वरूप ये अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त हुई है। इस आवंटन मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। वहीं एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर में रसद विभाग और प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर अवैध रूप से भंडारण किए गए सिलेंडर भी जब्त किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एलपीजी के मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में एलपीजी की मांग और आपूर्ति के संबंध में विवरण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा। उधर एलपीजी की कथित कमी के कारण आमजन को हो रही परेशानी के विरोध में कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक स्थलों को सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री शर्मा आज जोधपुर के लूणी स्थित श्री राजा राम आंजना आश्रम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों के विकास और निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
हमारे मंदिरों के लिए हमने पूजा पाठ के लिए और उसके लिए 2 साल में 25 करोड़ से अधिक पैसा दिया है और हम लगातार हमारा निर्माण हो रहा है, चाहे मैनीपुर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, तनोट माता हो, लगातार हम विभिन्न मंदिरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है, परिश्रमों को तीर्थ यात्रा भी हम करा रहे हैं। 86,000 से अधिक लोगों को हमने तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना और इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक कल्याण के कामों का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं को 3,400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही सरकार बालिका शिक्षा और बाल विवाह उन्मूलन के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है और इस लक्ष्य को हासिल करने में नीमराणा का विनिर्माण मॉडल अहम भूमिका निभाएगा। मुख्य सचिव ने ये बात आज कोटपुतली बहरोड के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के प्रवास के दौरान कही। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली देखी और उद्यमियों के साथ बैठक की। उन्होंने भारतीय और जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, उनके समाधान के लिए अधिकारियों से बात की। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और निवेशकों को सहयोग दिया जा रहा है।
और नीमराणा मॉडल एक आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी राजस्थान का है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और इंडस्ट्री इंटरैक्शंस स्ट्रक्चर्ड रूप से किस प्रकार से किया जाना है। जापानीज इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन राजस्थान इज़ वेरी हाई। आज बड़ा सकारात्मक बैठक था जिसमें जो विकसित राजस्थान 2047 का जो रोड मैप है उनमें मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स के माध्यम से निमराना का एक बहुत अहम भूमिका रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले स्थलों की पहचान की है। मंत्रालयों ने इन मार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक उपाय किए हैं। आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के अवसर पर अभिनेता आमिर खान से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि लगभग 350 चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में से लगभग 280 में सुधार किया जा चुका है। श्री गडकरी ने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि सरकार नीतिगत सुधारों और अवसंरचना विकास के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में भारत को इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर ले जाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ है और अब हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है और हम 7वें नंबर से तीसरे नंबर पर आए हैं। और मेरे मिनिस्ट्री का ये मिशन है कि हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को विश्व में पहले नंबर पर लेकर जाएंगे।
रेलवे ने अपनी संचार प्रणाली को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। मध्य रेलवे के सभी 5 डिवीजनों में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक मजबूत दोहरे फाइबर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये प्रणाली गंभीर परिस्थितियों में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। प्रदेश में आज दुर्गाष्टमी और रामनवमी का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मंदिरों में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर, कोटा के करणी माता मंदिर, बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी सहित सभी प्रमुख शक्तिपीठों और राम मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री राम की शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। जोधपुर में निकाली गई शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री राम भारत की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन पद और प्रतिष्ठा से ऊंचा है।
सबसे पहले मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में यह रामनवमी का पर्व खुशहाली लाए, उन्नति लाए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए।
और अब मौसम। राज्य में आज भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर सहित शेखावाटी अंचल के झुंझुनू और सीकर में दोपहर बाद धूलभरी आंधी चली और बरसात हुई। चूरू में तेज बारिश दर्ज की गई। जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर जिलों में भी बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 28 मार्च से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में ज्यादातर जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।
एक कमजोर एक और मजबूत पश्चिम विक्षोभ 28 मार्च से राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में तेज मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की बारिश के रूप में रहेगा। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 29 और 30 मार्च को राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर आगामी 3-4 दिन आंधी बारिश का दौर रहने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम को देखते हुए अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 मार्च से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पमिलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया कल से शुरू होगी। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी विभाग के नए पोर्टल और SSOID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल, 4 मई और 11 मई को अगली सूचियां प्रकाशित होंगी। यदि सीटें खाली रहती हैं तो पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। झुंझुनू के लुमास गांव में आज साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में साइबर थाना झुंझुनू की टीम ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों को डिजिटल सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG आवंटन को मंजूरी दी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मौजूदा सरकार ने 2 साल में धार्मिक स्थलों के विकास पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में 350 ब्लैक स्पॉट्स में से 280 में सुधार किया। और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।